नमस्कार भारत, 28 फरवरी दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। विंग कमांडर अभिनंदन से पाकिस्तान में हुए सुलूक पर भारत की आपत्ति, कहा तुरंत हो सुरक्षित रिहाई। अमेरिका की अपील, सैन्य कार्रवाई से बचे भारत पाकिस्तान, लेकिन क्या घटेगा तनाव?
वो भी बड़बोले हैं, यहाँ पे भी हमारे लोग जो नेतृत्व है वो बड़बोला है, दोनों तरफ से एस्केलेशन चलती रहेगी।
और दुनिया जहान में बात इस्लामिक देशों के सम्मेलन में भारत को मिले निमंत्रण और पाकिस्तान के शिकवे की।
बिना मशावरत एक नॉन ओआईसी मेंबर को, जो कि ना ओआईसी का मेंबर है और ना ही ऑब्जर्वर है, उसको दावत दी गई।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। अमेरिका ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के बाद बने तनावपूर्ण हालात पर उसकी नज़र है। अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री पैट्रिक शैनन ने दोनों देशों से सैन्य कार्रवाई से बचने का आग्रह किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का यह बयान एक भारतीय पायलट के पाकिस्तान के कब्जे में होने का वीडियो सामने आने के बाद आया है। पाकिस्तान ने कल भारत के दो लड़ाकू विमानों को नियंत्रण रेखा के पास मार गिराने का दावा किया था और कहा था कि एक भारतीय पायलट उसके कब्जे में है। भारत ने पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। भारत के साथ पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे तनाव के कारण पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और सिंध प्रांत में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दोनों प्रांतों में सभी अस्पतालों के डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने सीनेट के सामने गवाही दी है। अपनी शुरुआती गवाही में कोहेन ने कहा कि उन्हें ट्रंप के लिए काम करने को लेकर अफसोस है। कोहेन ने कहा कि ट्रंप को पहले से ही पता था कि विकीलीक्स ईमेल्स जारी करने वाला है, जिससे उनकी विरोधी हिलेरी क्लिंटन को नुकसान पहुंचेगा। कोहेन ने राष्ट्रपति ट्रंप को नस्लभेदी, ठग और धोखेबाज बताया। उन्होंने कहा,
I am ashamed of my weakness and my misplaced loyalty, of the things I did for Mr. Trump in an effort to protect and promote him. I am ashamed that
मैं अपनी कमजोरियों और अपनी वफादारी बदलने के लिए शर्मिंदा हूँ, उन सब चीज़ों के लिए शर्मिंदा हूँ जो मैंने ट्रंप को बचाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए की। मैं अपनी आत्मा की आवाज़ न सुनकर ट्रंप के बुरे कार्यों को छिपाने के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि असल में ट्रंप हैं क्या। वो नस्लभेदी हैं, वो एक चालबाज और धोखेबाज हैं। ये थे ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच वियतनाम की राजधानी हनोई में आज दूसरे दिन भी बातचीत होगी। माना जा रहा है कि ये बातचीत कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों को हटाने के रोड मैप पर केंद्रित होगी। कल भी दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने साथ साथ रात्रि भोज किया और संवाददाताओं के सवालों के जवाब दिए। ट्रंप और किम पहली बार पिछले साल सिंगापुर में मिले थे, लेकिन उसके बाद से परमाणु हथियारों के मुद्दे पर बहुत कम प्रगति हुई है। वेनेजुएला के विपक्षी नेता खुआन गोइदो ने कहा है कि काराकस लौटने में विफल रहने के कारण वो अब ब्राजील जा रहे हैं। गोइदो के ब्राजील के दक्षिणपंथी नेता और राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से मुलाकात कर सकते हैं। ब्राजील उन 50 से अधिक देशों में शामिल है जिन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से इस्तीफा देने की अपील की है और कहा है कि वो गोइदो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दें। मादुरो ने कहा है कि क्योंकि गोइदो ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रैवल वैन को तोड़कर कोलंबिया की यात्रा की, इसलिए वेनेजुएला लौटने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। बेंगलुरु के एम चेन्नास्वामी स्टेडियम में हुए T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर कप्तान विराट कोहली के हाफ सेंचुरी की मदद से निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 190 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने इस स्कोर को बौना साबित कर दिया। मैक्सवेल ने सबसे अधिक 113 रन बनाए। इस पारी में मैक्सवेल ने 9 छक्के और 7 चौके लगाए। इसके साथ ही मेहमान टीम ने 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की भारत में ये पहली T20 सीरीज में जीत है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। ये आवाजें उस मुल्क की आवाम के एक हिस्से की हैं जहां के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री ने कल अमन और बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन कराची और लाहौर में हुए प्रदर्शनों के दौरान लगे नारों से साफ है कि अभी हवा में दोस्ती की खुशबू को खोजना आसान नहीं। ये प्रदर्शनकारी पाकिस्तान में एक भारतीय विमान को मार गिराए जाने पर खुशी जाहिर कर रहे थे। पाकिस्तान के मुताबिक इस विमान में सवार रहे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान उसके कब्जे में है। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के वीडियो भी सामने आए। इनमें से कुछ वीडियो में वो जिस स्थिति में दिखे उसे लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे जनेवा समझौते का उल्लंघन बताया। भारत ने उनकी तुरंत सुरक्षित रिहाई की मांग की है। उधर अमरीका ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव घटाने पर ध्यान लगाए हुए है। अमरीका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री पैट्रिक शैनन के मुताबिक उन्होंने दोनों देशों से कहा है कि वो आगे कोई सैन्य कार्रवाई न करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कल भारत के सामने बातचीत की पेशकश रख चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान से आने वाली हर आवाज़ में शांति के सुर सुनाई नहीं देते। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंत्री फयाज उल हसन चौहान को सुनिए।
वफाकी हुकूमत ने जो इंडियन फिल्मों के हवाले से फैसला किया है और वज़ीर इत्तला तो नशरियात फवाद चोई साहब ने जो ऐलान किया है कि पूरे पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों की नुमाइश तमाम सिनेमा घर में पैन होगी, उसी पॉलिसी को मैं आगे ले जाते हुए आज ऐलान कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर किसी सिनेमा किसी थिएटर के अंदर किसी इंडियन मूवी की नुमाइश इंशाल्लाह नहीं होगी। और थिएटर्स के हवाले से कि जो डायरेक्ट मेरी मिनिस्ट्री की जुरिस्डिक्शन में आता है, मैंने पॉलिसी दी है कि किसी सरकारी और गैर सरकारी थिएटर के अंदर कोई इंडियन गाने के ऊपर किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी, ये बैन है।
ये थे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंत्री फयाज उल हसन चौहान, जो कह रहे थे कि तमाम भारतीय गीत संगीत के कार्यक्रमों सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई है। और फिलहाल ताजा स्थिति की जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। जी शुमाइला, समझौता एक्सप्रेस पर लगी रोक तो हट गई है, पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है ट्रेन, लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध जिस स्थिति में आ गए हैं वहां कुछ समझौते के आसार नजर आते हैं?
देखिए, कल पाकिस्तान के अंदर बहुत एक्टिविटी होती रही है और पाकिस्तान की जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, जो इस मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी एक तरह से फोरम है, उनकी एक मीटिंग हुई है। ये जो अथॉरिटी है इसमें पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप इसकी मेंबर है, और ये तभी इसकी मीटिंग बुलाई जाती है जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई होती है। इस मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड हुआ, क्योंकि ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान की बनती है, ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट, इवन जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको भी यही फोरम जो है ये लुक आफ्टर करता है। फैसले क्या हुए ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जो ही ये मीटिंग खत्म हुई है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने एक टेलीवाइज एड्रेस किया था
जी।
और उसमें उनकी जो टोन थी वो बिल्कुल विक्टोरियस नहीं थी। उन्होंने एक बार फिर इंडिया को यही कहा है कि अगर आपको पुलवामा जो अटैक है उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है, जिस किस्म की करवानी है हम उसके लिए तैयार हैं, अगर आप टेररिज्म को लेकर आप बातचीत करना चाहते हैं पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, और हम एक बार फिर आपको बातचीत ही की दावत देंगे, और हम ये समझते हैं कि हमने जो आज किया है वो हमें करना था, क्योंकि हम एक सॉवरन स्टेट है और कोई भी सॉवरन स्टेट ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसकी एयर स्पेस की या उसकी बाउंड्रीज की वॉयलेशन की जाए। तो आज का जवाब देना हमारी कंपल्शन थी, लेकिन हमने ये मेक श्योर किया कि उसके अंदर कोई जानी नुकसान ना हो, कोलैटरल डैमेज ना हो, लेकिन बातचीत जो है वही है रास्ता आगे, क्योंकि जो वॉर्स हैं वो मिसकैलकुलेशंस क्रिएट करती हैं और पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं और मिसकैलकुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकते।
जी शुमाइला, इमरान खान ने जो कहा उसे तो पूरी दुनिया ने सुना, वो पहले भी बातचीत की बात करते रहे हैं, लेकिन जो एक्शंस हैं बात उन पर की जा रही है, खासतौर पर भारत में इमरान खान से जो मांग की जा रही है या पाकिस्तान सरकार से, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन जो इस समय पाकिस्तान में है उन्हें रिहा करने की मांग की जा रही है, क्या उन्हें लेकर कोई अपडेट है?
देखिए अभिनंदन जो है उनकी वीडियोस कल रिलीज की हैं पाकिस्तान की मिलिट्री ने और अपेरेंटली वो कंफर्टेबल हैं और उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री स्पोक्समैन हैं उन्होंने भी जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि हम इसी उसी तरह उन्हें ट्रीट करेंगे जिस तरह के सिविलाइज नेशंस करती हैं। जो वापसी का मामला है जाहिर है कि अभी इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में तो नहीं है, लेकिन इंडिया ने कोई जो सुनने में आया कि डोजियर दिया है पाकिस्तान की सरकार को और मुतालबा भी किया है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद बजाय सामने नजर नहीं आ रही होती, लेकिन दोनों मुल्कों के उस पर कोई ना कोई कॉन्टैक्ट होते हैं। अभी तक इस हवाले से कोई अपडेट तो नहीं है। अपडेट तो यही है जो कि हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमने वीडियो देखी है उसके अंदर काफी कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे अभिनंदन।
क्या होगा जी, एक जानकारी मैं आपसे और जानना चाह रहा था कि बीते दो दिन तनाव बढ़ाने वाले रहे हैं, आज को लेकर कोई इंडिकेशन, कोई संकेत, क्या कुछ चल रहा है?
देखिए, तनाव बढ़ाने वाले पिछले दो दिन नहीं रहे हैं, पिछले जब से पुलवामा अटैक हुआ था तो तनाव बढ़ता ही चला जा रहा था, एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट हुआ हुआ था खासतौर पे इंडियन मीडिया में। जब पाकिस्तान की एयर स्पेस की वॉयलेशन हुई है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फिर ये सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा और मिलिट्री से डिमांड किया जाने लगा कि इसका जवाब दिया जाए। आज क्या होगा, लगता ऐसा है कि बहुत से और मुल्क जो हैं, एक डिप्लोमेटिक जो है वो एफर्ट शुरू की गई है, सऊदी अरब से पाकिस्तान ने बात की है, अमरीका से रबते हुए हैं, ब्रिटेन से रबते हुए हैं, तुर्की इन्वॉल्व हुआ है, OIC इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब देखना तो यही है कि मामला आगे कैसे जाएंगे। और जाहिर है कोई भी ऐसी एफर्ट होगी वो वन साइडेड नहीं हो सकती, जब दोनों मुल्क इस पॉइंट पे आएंगे तो ही कुछ इस हवाले से पेशरफ्त या डेवलपमेंट हो सकेगी।
जी शुमाइला, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर पूरी दुनिया की नजर है, जैसा शुमाइला भी बता रही थी, कई देश तनाव घटाने के लिए अपील भी कर चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल में क्या ऐसा करना मुमकिन है? हमारे साथी अनंत प्रकाश ने रक्षा मामलों के विशेषज्ञ अजय साहनी से यही सवाल किया।
भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वर्तमान हालात हैं उसमें सुलह के रास्ते क्या हैं?
देखिए, ये जो हालात हैं ये हमारी राजनीतिक जो नेतृत्व है उसने बिना सोचे समझे जो कदम उठाए हैं उसका नतीजा है। एक बहुत ही पुराना तरीका इस्टेब्लिश था एक जमाने में, जहाँ ये जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ होती थी वो मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पे होती थी, उसका पूरी दुनिया में और पूरे देश में तमाशा नहीं बनाया जाता था। इस वजह से अगर उसको डाउनवर्ड कैलिब्रेट करना होता था, डीएस्केलेट करना होता था, तो सीक्रेसी में फौज जो भी करना चाहती थी, दोनों फौजें एक एस्केलेटरी या डीएस्केलेशन का लैडर होता है उसके मुताबिक वो धीरे धीरे टेंशन को कम कर देते थे, ज्यादा भी करना होता था कर देते थे। जब आप पूरी चीज को राजनीतिक स्तर पे पूरे देश में और दुनिया में एक इंटरनेशनल कैंपेन बना देते हैं तो ये सीक्रेसी में जो काम होते हैं वो नहीं हो सकता। अब दोनों तरफ से ये है कि वो भी बड़बोले हैं, यहाँ पे भी हमारे लोग जो नेतृत्व है वो बड़बोला है, तो दोनों तरफ से एस्केलेशन चलती रहेगी। और मेरे हिसाब से न उनके पास कोई ऐसा तरीका है न हमारे पास जिससे ये अपना राजनीतिक आप कहें जो सिलसिला शुरू किया है उसे बिना नुकसान उसे रोक सकें, क्योंकि इनको अपनी इज्जत रखनी है, उन्होंने अपनी इज्जत रखनी है, तो ये बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई मुझे नहीं दिखता है इम्कान के किसी रास्ते से कम हो।
सर, ये एस्केलेटर होता क्या है?
खास नहीं है, वो यही होता है कि अगर आप कुछ मेरे खिलाफ करते हैं तो उसका जो जवाब है एक स्पेक्ट्रम में होता है कि आपने मेरे दो आदमी मारे तो मैं आपके दो या तीन आदमी मार दूंगा या चार आदमी मार दूंगा, फिर आप उसका जो समझोगे मुझ पे आपको नुकसान डालना है तो आप उसके मुताबिक मुझे नुकसान पहुंचाओगे, लेकिन वो भी एक एकदम से दो आदमी से 2 लाख आदमी पे नहीं पहुंचता। हाँ, ऐसा नहीं होता कि भाई आपने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मेरे दो आदमी मार दिए तो मैं सीधा सीधा जंग पे पहुंच गया। तो एक वो स्टेजेस होती हैं, आप कह सकते हैं एक प्राइवेट लैंग्वेज होती है फौज में, जो फौजी और फौजी दोनों तरफ के समझते हैं कि भाई ठीक है इसने इतना किया तो मैं इतना करूंगा। ऐसे नहीं करता कि एकदम से 4 दर्जे या 8 दर्जे ऊपर पहुंच जाए, ये तो कोई बहुत आगे नहीं गई है बात। मुश्किल ये है कि ये शुरू से फौज के बात में नहीं रहा, ये 2016 से फौज के हाथों से बाहर रह गया है। 2016 से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स और किस्म के ऑपरेशन, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन होते रहते थे, उनका जिक्र पब्लिक में नहीं होता था, उनका सैंक्शन पॉलिटिकल होता था, लेकिन उस पे बाहर जाके लोग प्रचार नहीं करते थे, इलेक्शन कैंपेन नहीं चला। प्रॉब्लम यह है जो एस्केलेशन हो रहा है वो फौजी आमने सामने खड़े नहीं सोचते कि भाई मेरा इतना नुकसान होगा, उसका अगर मैं बहुत ज्यादा नुकसान कराऊंगा तो वो भी मजबूर होगा मुझ पे कुछ करने का, तो वो जो एक रैशनल कॉस्ट बेनिफिट होता है ना, वो अब हट गया है, क्योंकि अब ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह से जीता जा सकता है।
ये थे रक्षा मामलों के विशेषज्ञ अजय साहनी। भारत और पाकिस्तान के बीच बनी तनाव की स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी में दिख रहे हैं वो लोग जो सरहद पर बसे हैं। पंजाब के सीमावर्ती एक गांव में हमारे साथी सरबजीत धालीवाल ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की।
मेरा नाम कोमलप्रीत है।
कोमल जी, ये बताइए कि जो स्थिति बनी हुई है उससे आपकी जो निजी जिंदगी है वो कितनी प्रभावित हो रही है?
बिल्कुल, बहुत प्रभावित हो रही है। मन में एक बहुत बड़ी टेंशन चल रही है। जैसे हम बॉर्डर पे रहते हुए पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास तो स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई घर का जो रोज़ाना का हमारा सामान होता है वो भी हमें काफ़ी दूर से लेके आना पड़ता है। बच्चे हैं हमारे जो सुबह से स्कूल गए हैं, अगर कुछ भी हो जाता है तो हमारे बच्चे कहाँ हैं ये हमें कैसे पता चलेगा। बच्चों की सबसे ज़्यादा टेंशन लगी हुई है। सेकंड, हमारी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है हमको छोड़ के जानी पड़ेगी ऐसे ही, उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी। हमारी फसलें हैं, सब कुछ तो डिस्टर्ब हो जाएगा, और मन में ये तो बहुत बहुत बड़ी टेंशन चल रही है।
क्या इस मामले का जो बातचीत से हल होना चाहिए?
बिल्कुल, बातचीत से ही हल होना चाहिए।
बॉर्डर एरिया में आप रहते हो, दिक्कत क्या है कल से?
मुझे पता चला है कि ये आपने हिंदुस्तान की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, तो उसके बाद जब हम इधर घर में आए तो घर में बिल्कुल बड़ा घबराहट थी पूरे परिवार में, कि जो इतना घर में सामान है, जो पशु हैं, ट्रैक्टर हैं, खेती के संद हैं काफ़ी, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे? तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है, मीडिया में जब हम सुन रहे हैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मन में बहुत परेशानी है। नींद भी नहीं रात को आई, रिश्तेदार फ़ोन करके बार बार पूछ रहे कि आप किसी सेफ जगह पर चले जाओ, पर बात ये है कि सेफ जगह एक बार तो होगी, दो बार होगी, बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या करें हम?
ये थे सीमावर्ती इलाकों में बसे कुछ लोग जिनसे बात कर रहे थे सरबजीत धालीवाल। भारत में आम चुनाव करीब हैं, ऐसे में पाकिस्तान के साथ बनी तनाव की स्थिति को लेकर राजनीति जारी है। भारत में कल 21 विपक्षी दलों की बैठक हुई और इसमें सरकार पर मामले के राजनीतिकरण का आरोप लगाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुनिए।
The meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे थे कि सत्ताधारी पार्टी बलिदान का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कई सवाल उठाए। सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने में देर नहीं की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सुनिए।
पहले तो ऐसी कोई राजनीतिकरण नहीं हुई है, ना हमारा इरादा है, और 21 पार्टियों के बयान से कौन खुश है? पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना और वहां की मीडिया। विपक्ष को सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के बयान इस समय उपयुक्त है।
ये थे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब आज के अखबारों की बात दिनेश उप्रेती के साथ। जी दिनेश।
जी वसीले जी, पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा में दाखिल होने की खबरें सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है जेट्स डाउन टेंशन अप। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है टेंशन इन द एयर। इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खी है डे आफ्टर स्लीपलेस नाइट। स्टेट्समैन लिखता है IAF पायलट कैप्चर्ड, पाक F-16 शॉट डाउन। इकोनॉमिक्स टाइम्स की हेडलाइन है ऑल अनक्वाइट ऑन नॉर्दर्न फ्रंट। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना के एक पायलट के पाकिस्तानी कब्जे में होने की पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। सुबह भी उन्होंने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। प्रधानमंत्री मोदी के घर पर बुलाई गई बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। विपक्षी दलों के शहादत पर सियासत ठीक नहीं के बयान को भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है।
जी, जो बयान अभी हमने सुना है।
जी, ये 21 विपक्षी दलों की कल एक संसद भवन की लाइब्रेरी में बैठक थी और इसके बाद एक साझा बयान जारी किया गया था। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि सुरक्षा पर उन्होंने चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बातचीत से मसला सुलझाने के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान को भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने कल कहा कि उसने पुलवामा चरमपंथी हमले व आतंकी फंडिंग के संबंध में जैसे मोहम्मद आतंकवादियों व अलगाववादियों के नेताओं के 11 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इसके अलावा जनसत्ता में एक खबर है कि दिल्ली और मुंबई समेत देश के 5 शहरों में 72 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसमें से 3 शहर पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात के हैं।
जी बहुत शुक्रिया दिनेश उप्रेती अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब दुनिया जहां, भारत सरकार ने घोषणा की है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 1 मार्च को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगी। ये पहला मौका है जब OIC ने भारत को इस तरह आमंत्रित किया है। OIC में हमेशा से सऊदी अरब का दबदबा और पाकिस्तान का बोलबाला रहा है। पुलवामा हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, भारत और भारत की विदेश नीति के हिसाब से ये घटनाक्रम कितना महत्वपूर्ण है, इन्हीं सवालों की पड़ताल के साथ सुनिए BBC संवाददाता संदीप सोनी की प्रस्तुति।
दुनिया जहान। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन OIC 57 देशों का समूह है जो मोटे तौर पर इस्लाम को मानने वाले देशों से मिलकर बना है। 50 साल पहले यरूशलम में अलक्सा मस्जिद पर हमले के बाद मुसलमानों के पवित्र स्थलों को महफूज बनाने, आपसी सहयोग को बढ़ाने और नस्ली भेदभाव के साथ साथ उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए इस समूह की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन OIC की बुनियाद में ही भारत के साथ विवाद के बीच पड़ गए। भारत के पूर्व राजनयिक तलमीज अहमद बताते हैं।
अगस्त 1969 में एक इजरायली जो मेंटली डिस्टर्ब्ड माना जाता है, उसने अल अक्सा मस्जिद के ऊपर हमला किया। 1967 वॉर के बाद जब ये मॉस्क इजरायली ऑक्यूपेशन में आ गया था, तो जाहिर है कि वहाँ मुसलमान देशों में बहुत ज्यादा घबराहट फैली थी कि ये एक साजिश है मस्जिद को तोड़ने की। रबात में 24 मुसलमान देश इकट्ठे हुए, किंग हसन ऑफ मोरक्को, उन्होंने सबको बुलाया। ये जो हमला हुआ था मस्जिद के ऊपर, उसको तो उन्होंने कंडेम किया। इस ग्रुप में उन्होंने इंडिया को भी बुलाया। जब वो हमारे डेलीगेशन वहाँ आने ही वाले थे, फखरुद्दीन अली अहमद उसके लीडर होने वाले थे, पाकिस्तान में उनके लीडर थे याहिया खान, तो पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया को इनवाइट नहीं करना चाहिए, और इंडिया अगर आ गया और वो मेंबर बना तो पाकिस्तान विड्रॉ कर लेगा। तो इस वजह से सऊदी अरब ने ये एक निश्चय किया कि इंडिया को डिसइनवाइट कर देना चाहिए। तो जो हमारी डेलीगेशन वहां थी, उसको कॉन्फ्रेंस हॉल से रिमूव कर दिया गया।
भारत की नजर में OIC पाकिस्तान के लिए एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रहा है जहां उस पर कोई रोक टोक नहीं है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान ने इस मंच का जमकर दुरुपयोग किया। कश्मीर, बाबरी मस्जिद और मुसलमानों के कथित मानवाधिकार हनन के प्रस्तावों के साथ पाकिस्तान की भाषा भारत के लिए जब बर्दाश्त से बाहर होती चली गई, तो नतीजा ये हुआ कि भारत ने पहले तो अपनी कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन साल 2001 से प्रतिक्रिया देना ही बंद कर दिया। लेकिन अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच पुलवामा हमले के बाद तनाव चरम पर है, भारत पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर चरमपंथियों के ठिकानों पर हवाई हमले के दावे कर रहा है, OIC के मंच पर भारत की मौजूदगी का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के पूर्व राजनयिक तलमीज अहमद कहते हैं,
मुझे लगता है कि OIC में इंडिया को पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। ये सारे खाड़ी के देश, पाकिस्तान से जो टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट मिल रहा है, उससे वो पूरी तरह से आजिज है। मुझे नहीं लगता कि विदेश मंत्री का भाषण कोई बुनियादी तौर से बदलेगा। हम ये कहेंगे, नंबर वन, के हमारे मुखालिफत है एक्सट्रीमिज्म के साथ, किसी धर्म के साथ नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है। नंबर टू, हम कहेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है वो है मॉडरेशन, कॉम्पोजिट कल्चर, प्लूरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म। तीसरा मैसेज होगा डेवलपमेंट के बारे में।
OIC एक ऐसा मंच रहा है जहां हमेशा सऊदी अरब का दबदबा और पाकिस्तान का बोलबाला रहा। भारत को इस मंच पर बुलाने में संयुक्त अरब अमीरात की अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि सऊदी अरब से विचार विमर्श के बिना संयुक्त अरब अमीरात भारत को न्योता नहीं दे सकता। इस हिसाब से देखें तो भारत पाकिस्तान में सीमा पर बदलते घटनाक्रम के बीच अबू धाबी में ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर कमाल पाशा कहते हैं,
बिग ब्लो टू पाकिस्तानी डिप्लोमेसी एंड इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर आवर एफर्ट। हमारे जो कोशिश हो रही है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली ग्लोबली, तो इसमें यह बहुत बड़ा कदम है जिसमें इमारात और सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का इनिशिएटिव है। की प्लेयर हैं मोहम्मद बिन जायद और वो मोहम्मद बिन सलमान को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और करेंगे आगे चल कर।
प्रोफेसर पाशा इस और भी ध्यान दिलाते हैं कि ओआईसी के मंच पर 50 साल के बाद भारत को बुलाया जाना भारत की सतत विदेश नीति या प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कामयाबी नहीं बल्कि इसराइल और अमेरिका की इसमें बड़ी भूमिका है।
इसराइल है, अमेरिका है, जो इमारात और सऊदी अरेबिया के पर काफी इन्फ्लुएंस ला रहे हैं और लाएंगे, और इनडायरेक्टली इंडिया को भी मैसेज वहीं से आ रहा है कि आपकी जो डिमांड है पाकिस्तानी टेररिज्म के खिलाफ हम आपके साथ हैं और इन रिटर्न हमें कुछ चाहिए, ईरान के खिलाफ सपोर्ट कीजिए, दूसरी बात चाइना के खिलाफ हमारे साथ रहिए, जिसके लिए नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज सिर्फ रेस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि ये सब हालत पहले भी थे, लेकिन अब जो अमरीका के अफगानिस्तान से विड्रॉ करने की बात हो रही है तो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं और उनका सऊदी अरेबिया का मेन एजेंडा ये है कि भारत ऐसी कुछ हरकत ना करे जिसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर।
इन सब के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कल इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन करके ये संकेत दे दिया है कि अबू धाबी में ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत की राह आसान नहीं होगी।
बिना मशावरत एक नॉन ओआईसी मेंबर को, जो कि ना ओआईसी का मेंबर है और न ही ऑब्जर्वर है, उसको दावत दी गई। आज न सिर्फ ओआईसी के एक मेंबर पर जारियत की गई है बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो इस वक्त कैफियत है और कश्मीर के मुसलमानों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, वाकया पुलवामा में होता है लेकिन रिएक्शन हिंदुस्तान की 10 रियासतों में देखा जाता है। कश्मीरियों को, वो स्टूडेंट्स जिनको हिंदुस्तान ने स्कॉलरशिप में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए भेजा, उनको वहां धकेला जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं और उन्हें अपनी जान अपने कमरों में छुप के जान बचानी पड़ती है।
जानकार कहते हैं कि तेजी से बदलते कूटनीतिक समीकरणों के बीच ओआईसी में भारत को पाकिस्तान से कड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन क्या भारत ओआईसी के मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग कर पाएगा? कूटनीति के हिसाब से ये भारत के लिए भी परीक्षा की घड़ी होगी। संदीप सोनी, बीबीसी, दिल्ली।
दुनिया जहान का ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और ये बता दें कि कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेंगलुरु में जो मैच खेला गया था उसे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीत लिया और सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली। और अब चलते चलते मुख्य समाचार दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के बाद बने तनावपूर्ण हालात पर उसकी नजर है। अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री पैट्रिक शनन ने दोनों देशों से सैन्य कार्रवाई से बचने का आग्रह किया है। भारत के साथ पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे तनाव के कारण पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और सिंध प्रांत में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने सीनेट के सामने गवाही दी है। अपनी गवाही में कोहेन ने कहा है कि ट्रंप के लिए काम करने को लेकर उन्हें अफसोस है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच वियतनाम की राजधानी हनोई में आज दूसरे दिन भी बातचीत होगी। बेंगलुरु के एम चन्नास्वामी स्टेडियम में हुए T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर कप्तान विराट कोहली की हाफ सेंचुरी की मदद से निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 190 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने इस स्कोर को बौना साबित कर दिया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।